डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 3 चमत्कार भाग 2 और भूत प्रेत भगाने की विद्या 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 3 चमत्कार भाग 2 और भूत प्रेत भगाने की विद्या है। हम ईश्वर के कुछ चमत्कारों के बारे में बात कर रहे हैं जो गॉस्पेल में दिखाई देते हैं और वे आज भी ईश्वर की विश्वसनीयता और हमारे लिए ईश्वर के प्रेम के संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। अब मैंने पापा बेसवेस्वे और उनकी पत्नी जूलियन के बारे में बात की और अब मैं दूसरे खाते पर जा रहा हूँ और यह एंटोनेट मालोम्बे नाम के किसी व्यक्ति का है। एंटोनेट मालोम्बे, मैंने उसकी कहानी पहले सुनी थी लेकिन मैंने सीधे तौर पर उससे नहीं सुनी थी, इसलिए जब हम कांगो गए तो मैं उसका साक्षात्कार करने में सक्षम हुआ और उसने मुझे अपनी बेटी की कहानी बताई। उनकी एक बेटी 2 साल की थी। वह चिल्लाई कि उसे सांप ने काट लिया है और जब तक उसकी माँ उसके पास पहुंची उसने पाया कि वह सांस नहीं ले रही थी और इसलिए गांव में कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं थी। उसने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध लिया और पास के गांव में भाग गई जहां एक पारिवारिक मित्र कोको नगोमो मोरिस एक प्रचारक के रूप में मंत्रालय कर रहा था और कोको मोरिस ने बच्चे थेरेसी के लिए प्रार्थना की और थेरेसी फिर से सांस लेने लगी और अगले दिन वह ठीक हो गई। इसलिए मैंने मैडम जैक्स से, जैसा कि उन्हें स्थानीय रूप से जाना जाता है, पूछा कि उन्हें फिर से सांस लेना शुरू करने में कितना समय लगा। वह कितने समय से सांस नहीं ले रही थी? उसे एक स्थान से दूसरे स्थान, इस एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए रुकना और सोचना पड़ता था। उसने कहा, लगभग 3 घंटे। अब इस कहानी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि थेरेसी के मस्तिष्क को कोई क्षति नहीं हुई थी और उसने कैमरून में मदरसा पूरा किया और अब वह कांगो में मंत्रालय कर रही है, कांगो में जहां वह है। और यह महत्वपूर्ण है। यह सबसे नाटकीय वृत्तांत नहीं था लेकिन यह वह था जिसने मुझ पर सबसे अधिक सीधा प्रभाव डाला और मुझे अन्य वृत्तांतों के लिए और अधिक खुला कर दिया, क्योंकि थेरेसी मेरी पत्नी की बहन है और मैडम जैक्स एंटोनेट मोलाम्बे मेरी पत्नी की माँ है। तो यह परिवार के भीतर की कहानी थी। हमारे पास सारा स्पीयर की परवरिश का एक और विवरण भी है जो कांगो में एक कनाडाई नर्स है। अब बढ़ोतरी के अलावा और निश्चित रूप से अगर मैं अधिक यात्रा कर रहा होता तो मुझे इनमें से बहुत कुछ मिल सकता था। मेरे पास किताब और अन्य जगहों पर उनमें से बहुत कुछ है। लेकिन प्रकृति चमत्कारों के विषय पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि फिर से प्रकृति चमत्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मनोदैहिक माना जाएगा। पूरे इतिहास में इनमें से कई रिपोर्टें हैं। हमने उन्हें 17वीं सदी के श्रीलंका में एक रोमन कैथोलिक पादरी के साथ रिपोर्ट किया है। हमारे पास ये 1800 के दशक के लूथरन पादरी के पास हैं, जिनका हमने पहले उल्लेख किया था, पादरी ब्लमहार्ट। और हमारे पास उन्हें 20वीं शताब्दी में भी रिपोर्ट किया गया है। वास्तव में इंडोनेशिया से पानी पर चलने आदि की कुछ रिपोर्टें पहले के पुरुद्धार से भी आती हैं, लेकिन विशेष रूप से 1960 के दशक के पुरुद्धार में चमत्कारों की बड़े पैमाने पर रिपोर्टें थीं और पहले से ही एक संदिग्ध पश्चिमी शोधकर्ता था। ऐसा नहीं था कि वह चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उन दावों पर विश्वास नहीं करता था जो वह इंडोनेशियाई पुरुत्थान से सुन रहा था। कर्ट कोच स्वयं इंडोनेशिया गए और गवाहों का साक्षात्कार लिया, और उसने न केवल गवाहों का साक्षात्कार लिया बल्कि उसने कई अंधी आंखों को खुलते हुए भी देखा और पानी को शराब में तब्दील होते देखा। उनके कुछ आलोचक वे लोग थे जो वास्तव में पुनरुद्धार समाप्त होने के बाद इंडोनेशिया आए थे, लेकिन पुनरुद्धार के बीच में उन्होंने इनमें से कुछ चीजें घटित होती देखी। और इंडोनेशिया से कई अन्य रिपोर्टें भी हैं, जिनमें कुछ चश्मदीदों का पानी पर चलना भी शामिल है, जिनका मैंने साक्षात्कार लिया था। अब हमारे पास अन्य रिपोर्टें हैं। डोना उराकुआ ने मुझे पापुआ न्यू गिनी से एक रिपोर्ट दी, लेकिन मैं वॉचमैन नी की इस रिपोर्ट पर जा रहा हूं। अब वास्तव में चीन में ऐसे अन्य लोग भी हैं जो चमत्कारों के लिए अधिक जाने जाते थे। उनमें से एक तो इसके लिए खास तौर पर मशहूर था। उसका नाम जॉन सुंग था, लेकिन वॉचमैन नी उसी पीढ़ी से थे और वॉचमैन नी के पास भी एक प्राकृतिक चमत्कार का विवरण था। वह और उसके कुछ दोस्त एक गांव में प्रचार कर रहे थे और गांव के कुछ लोग टीम के सदस्यों से कह रहे थे, हम आपके भगवान पर विश्वास क्यों करें? आप जानते हैं, इस गांव में हमारे भगवान ने 200 वर्षों से भी अधिक समय से इस त्योहार पर बारिश होने से रोक रखा है। जब भी पुजारी उत्सव का कार्यक्रम तय करते हैं तो कभी बारिश नहीं होती। मुझे नहीं पता कि यह शुष्क मौसम था या क्या, लेकिन किसी भी मामले में इंजीवादी टीम के सदस्यों में से एक वह अकेले था और उसने भीड़ से कहा, इस साल उस दिन बारिश होने वाली है, और वे उस पर हंसे। वह वापस आया और टीम के बाकी सदस्यों को बताया और उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब अगर उस दिन बारिश नहीं हुई तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे भी उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तो उन्होंने बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया। त्योहार के निर्धारित दिन पर सूरज निकला हुआ था, एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, एक सामान्य सूर्योदय। और जब वे दिन के शुरुआती भोजन के लिए चावल खा रहे थे, अचानक उन्होंने छत पर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज सुनी, और बहुत जल्द यह उस गांव में पिछले कई वर्षों की सबसे भारी बारिश थी। पुजारियों ने कहा, ओह, हमसे गलती हो गई, हमें त्योहार को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत है। जिस तिथि के लिए उन्होंने त्योहार को पुनर्निर्धारित किया, इस बार ईसाइयों ने कहा कि उस दिन भी बारिश होने वाली थी, और निश्चित रूप से उस दिन भारी बारिश हुई। सड़कों पर बहते पानी के कारण पुजारियों के पैर बह गए, उनके भगवान की मूर्ति तोड़ दी गई, और उस गांव में बहुत से लोग मसीह में विश्वास करने लगे। यह अकाउंट मेरे एक करीबी दोस्त का है, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। डॉक्टर इमानुएल एटोपसन ने हिब्रू यूनियन कॉलेज से हिब्रू बाइबल में पीएचडी की। वह एचवा मंत्री भी हैं। पश्चिम अफ्रीका का इवेंजेलिकल चर्च। जब इमानुएल बच्चा था तब उसके पिता नाइजीरिया के एक अछूते क्षेत्र में चर्च स्थापित कर रहे थे। इमानुएल के पास बहुत सारी कहानियां थीं, लेकिन इनमें से एक कहानी उसने इन गांवों में से एक में सुनाई थी उसके पिता। यह 1975 के आसपास की बात है, बस अपने घर को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। वे अभी अभी आए हैं। उनके घर पर अभी तक छत नहीं थी और बरसात का मौसम बिल्कुल साफ आ गया था। आप आसमान से देख सकते हैं, आप जानते हैं जल्द ही बारिश होने वाली है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है, क्योंकि उसके घर पर छत बनने में 4 दिन और लगने वाले हैं। तो इमानुएल के पिता अनाना एटोप को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे घर पर छत नहीं होगी तब तक इस गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसेगी। खैर, वे हंसे और वे चले गए। वह परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैंने यह क्या कर दिया। लेकिन अगले 4 दिनों तक उस गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, हालांकि उस गांव के चारों तरफ बारिश हो रही थी। और उस स्थानीय समुदाय के लिए, जो जानता था कि बरसात का मौसम कैसा होगा, यह इतना नाटकीय था कि उन 4 दिनों के अंत में उस समुदाय में केवल एक व्यक्ति था जो ईसाई नहीं बना था। आज तक वे अभी भी उस तीव्र घटना के बारे में बात करते हैं जिसने उन्हें एक ईसाई गांव बना दिया। जो विद्वान यह दावा करते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी इस तरह के अनुभवों की रिपोर्ट नहीं कर सकते, वे दुनिया के प्रति अपने स्वयं के बहुत ही सीमित जोखिम को प्रकट करते हैं। अब कुछ लोग मानेंगे कि ये चीजें होती हैं, लेकिन वे इस बात से इनकार करेंगे कि ये चमत्कार हैं, क्योंकि उनका तर्क है सच्चे चमत्कार नहीं हो सकते। आमतौर पर वे एक गैर आस्तिक, अक्सर एक नास्तिक प्रारंभिक बिंदु से शुरू कर रहे हैं, और यह समस्या डेविड ह्यूम तक जाती है। लोग यह मान लेते हैं कि कई क्षेत्रों में चमत्कार नहीं होते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि डेविड ह्यूम ने यह साबित कर दिया है, जिसके बारे में आप तब तक सोच सकते हैं जब तक आप वापस नहीं जाते और उनका निबंध नहीं पढ़ते। उनका मूल तर्क यह है कि चमत्कार मानवीय अनुभव का हिस्सा नहीं है, जो कि हम जो देख रहे हैं उसके अनुरूप नहीं है। वे हमारे जीवन में हर दिन नहीं घटित हो सकते हैं, या हम उन्हें चमत्कार नहीं कहेंगे। हमें लगता है कि वे सिर्फ प्रकृति का स्वाभाविक क्रम थे, लेकिन किसी भी मामले में डेविड ह्यूम ने चमत्कारों को प्राकृतिक कानून का उल्लंघन माना, जैसे कि भगवान उन्हें करने के लिए कुछ कानून तोड़ रहे होंगे, भले ही भगवान ही थे जिन्होंने इन कानूनों को स्थापित किया होगा। अब उन्होंने पहले के विचारकों के विपरीत ऐसा किया। जाहिरा तौर पर वह चमत्कारों को इस तरह से परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति थे, हालांकि उन्होंने चमत्कारों के संबंध में अपनी अधिकांश शिक्षा देवताओं से ली थी। चमत्कारों पर उनका बहुत सारा निबंध उसी पर आधारित है। अधिकांश प्रारंभिक ज्ञानोदय वैज्ञानिक ईसाई थे। आइजैक न्यूटन, जिन पर वह विशेष रूप से प्राकृतिक कानून के अपने विचार के लिए निर्भर रहे होंगे, आइजैक न्यूटन चमत्कारों में विश्वास करते थे, विशेष रूप से बाइबल में चमत्कारों में, और शुरुआती न्यूटनियन भी ऐसा ही करते थे। तो यह विज्ञान का मामला नहीं था, ये तो हुई विज्ञान दर्शन की बात। यह कुछ ऐसा था जो डेविड ह्यूम से आया था। ह्यूम ने जिस तरह से तर्क दिया वह यह था, चमत्कार प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करते हैं। प्राकृतिक नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए चमत्कार नहीं होते। खैर, इस तरह का नियम किसने बनाया जिसमें कहा गया कि यदि आप चाहें तो ईश्वर कार्य नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता या उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि आप उस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं तो प्राकृतिक कानून, जैसा कि पहले के प्रबुद्ध विचारकों ने तर्क दिया था। ह्यूम ने यह स्वीकार किए बिना बस यह अनुमान लगा लिया कि वह यही कर रहा है। ह्यूम केवल अपनी राय बता रहे हैं, कोई तर्क नहीं दे रहे हैं। ह्यूम के अधिकांश तर्क प्राकृतिक कानून से हैं, उनके निबंध का पहला भाग उनका अधिकांश तर्क प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करने वाले चमत्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन आधुनिक भौतिकी ह्यूम की प्राकृतिक कानून की निर्देशात्मक अवधारणा को कमजोर कर देती है। आज इसका प्रयोग आम तौर पर वर्णनात्मक रूप से किया जाता है, और इसलिए उनका तर्क आधुनिक भौतिकी के साथ काम नहीं करेगा। साथ ही उनका तर्क कथित रूप से आगमनात्मक है, लेकिन जैसा कि अक्सर देखा गया है, यह वास्तव में वृत्ताकार है। यह विशेष रूप से सच है, विशेष रूप से उनके निबंध के दूसरे भाग में स्पष्ट है, जहां उनका तर्क है कि मानव अनुभव कोई चमत्कार नहीं दिखाता है, या कम से कम हम कभी विश्वास नहीं कर सकते कि चमत्कार होते हैं, क्योंकि मानव अनुभव हमें सिखाता है कि हम इसकी उम्मीद न करें। इसलिए वे कहते हैं, चमत्कारों के लिए अच्छी तरह से समर्थित प्रत्यक्षदर्शी दावों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि चमत्कार नहीं होते हैं, या कम से कम उन्हें घटित होते हुए नहीं दिखाया जा सकता है। खैर, यदि आपके पास चमत्कारों के लिए विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी गवाही हो तो क्या होगा? खैर, ह्यूम कहेंगे कि यदि आपके पास गवाही है तो यह विश्वसनीय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं या उन्हें घटित होते हुए नहीं दिखाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह पूरी तरह से एक गोलाकार तर्क है। वह उदाहरण के तौर पर ब्लेस पास्कल की भतीजी के उपचार का हवाला देते हैं। ब्लेज पास्कल एक बहुत ही प्रतिबद्ध ईसाई थे, अपने समय के जैनसेनिस्ट आंदोलन का हिस्सा थे और फिर भी इस अवधि में जैनसेनिस्टों को वास्तव में अच्छी तरह से पसंद नहीं किया गया था और उनके साथ बहुत विश्वसनीय व्यवहार नहीं किया गया था। वे अन्य कैथोलिकों, विशेष रूप से उस समय जेसुइट्स के लिए बहुत अधिक ऑगस्टिनियन थे और वे प्रोटेस्टेंट के लिए भी बहुत कैथोलिक थे। तो सबने कहा, नहीं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन पास्कल की भतीजी की आंखों में जलन हो रही थी और वह सदमे में थी। इससे सचमुच बहुत बुरी गंध आ रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में हर कोई जानता था कि उसके आसपास कौन था। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद उसके मुकुट से निकला एक पवित्र कांटा उसे छू गया था। अब व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता कि यह वास्तव में यीशु के मुकुट से निकला एक कांटा था। मुझे लगता है कि लूथर सही थे जब उन्होंने इन सभी अवशेषों के बारे में शिकायत की जो घूम रहे थे। लूथर ने कहा था कि सैक्सोनी में हर घोड़े को जूता देने के लिए होली क्रॉस से पर्याप्त कीले बची हुई थीं। लेकिन किसी भी मामले में यह शायद वास्तव में एक अवशेष नहीं था, बल्कि यह आस्था के लिए एक संपर्क बिंदु था। यह बात उसे छू गई। वह कई गवाहों के सामने तुरंत और सार्वजनिक रूप से ठीक हो गई। इसके परिणामस्वरूप फ्रांस की रानी मां ने इसकी जांच के लिए अपने स्वयं के चिकित्सक को भेजा ताकि इसे चिकित्सकीय रूप से प्रलेखित किया जा सके। खैर, क्यूम इस चमत्कारिक रिपोर्ट को देखता है और वह कहता है, ठीक है, इसे देखो, यह चिकित्सकीय रूप से प्रलेखित है, यह सम्मानित गवाहों द्वारा प्रमाणित है। मूलतः यह वह सब कुछ है जो ह्यूम ने कहा था कि अगर उसे इस तरह का कोई उदाहरण मिले तो वह उस पर विश्वास करेगा। और ह्यूम ने कहा, और हम जानते हैं कि यह विश्वसनीय नहीं है, तो हम किसी और चीज पर विश्वास क्यों करेंगे? और फिर वह आगे बढ़ता है। यही उनका तर्क है। यह पूर्वधारणा ही है जो उसके मामले को आगे बढ़ाती है। उनका तर्क केवल तभी काम करता है जब आप नास्तिकता या देववाद में मौजूद निष्क्रिय प्रकार के देवता की कल्पना करते हैं। ह्यूम ने स्पष्ट रूप से समकालीन ईसाई विज्ञान और क्षमा प्रार्थी के विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत किया। लेकिन कैम्ब्रिज, कॉर्नेल, ऑक्सफोर्ड और अन्य जगहों द्वारा प्रकाशित चमत्कारों पर ह्यूम के लिए हाल ही में कई दार्शनिक चुनौतियां आई हैं। एक व्यक्ति ने जॉन एहरमन की ऑक्सफोर्ड कहानी ह्यूम्स एब्जेक्ट फेल्योर नामक पुस्तक की आलोचना की और कहा, आप ह्यूम को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप एक ईसाई हैं। और लेखक ने कहा, ठीक है, वास्तव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं जिसकी तुलना एक रूढ़िवादी ईसाई से की जा सके, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा कि यह एक बुरा तर्क था और इसीलिए मैंने इसके खिलाफ तर्क दिया। ह्यूम के तर्क का एक हिस्सा बहुत जातीय केंद्रित है। ह्यूम ने कहा कि केवल अज्ञानी और बर्बर लोग ही चमत्कारों की पुष्टि करते हैं। अगर आज किसी ने ऐसा कहा है तो हम निश्चित रूप से उन्हें जातीय केंद्रित कहेंगे। यह दृष्टिकोण रखने वाला हर व्यक्ति आवश्यक रूप से जातीय केंद्रित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ह्यूम था। ह्यूम का नस्लवाद सर्वविदित है। ह्यूम ने कहा, देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में पीढ़ियों से गुलाम हैं और फिर भी उनमें से एक ने भी शिक्षा का कोई बड़ा स्तर हासिल नहीं किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ह्यूम ने कहा, ठीक है, यह एक जमैकावासी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कविता सुनाता है, लेकिन कोई भी तोता जो सुनता है उसे दोहरा सकता है। जिस जमैका का उन्होंने उल्लेख किया वह फ्रांसिस विलियम्स थे, जिन्होंने अंग्रेजी और लैटिन में अपनी कविताएं लिखीं। लेकिन ह्यूम अत्यधिक पूर्वाग्रही थे। ब्रिटिश साम्राज्य में ईसाई उन्मूलनवादियों को उनके मामले के खिलाफ बहस करनी पड़ी क्योंकि ह्यूम गुलामी के बहुत समर्थक थे और अन्य लोग कह रहे थे, ठीक है, ह्यूम एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी हैं। यदि वह गुलामी समर्थक है तो गुलामी सही होगी। उन्होंने कहा, श्वेत सभ्यताओं के अलावा कभी कोई महान सभ्यता, कोई महान आविष्कार, कोई महान कलाकृति नहीं हुई। क्या वह पहले चीनी साम्राज्यों से पूर्णतया अनभिज्ञ था? क्या वह भारत के साम्राज्यों या अफ्रीका के साम्राज्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ था? खैर, मैं मानता हूं कि वह शायद दक्षिण अमेरिका के साम्राज्यों से अनभिज्ञ था, लेकिन किसी भी मामले में ह्यूम अपने नस्लवाद के लिए प्रसिद्ध था। रुडोल्फ बुल्टमैन नहीं थे। मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह सीधे तौर पर नस्लवादी थे, लेकिन बुल्टमैन ने कहा कि परिपक्व आधुनिक लोग चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, बिजली की रोशनी और वायरलेस का उपयोग करना असंभव है, जिसका अर्थ है कि टेलीग्राफ मशीन और आत्माओं और चमत्कारों की नए नियम की दुनिया में विश्वास करना। लेकिन बुल्टमैन, जिसे आधुनिक दुनिया के रूप में परिभाषित करता है, वह आधुनिक दुनिया से सभी पारंपरिक यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों, पारंपरिक आदिवासी धर्मवादियों, भूतवादियों, मूल रूप से 20वीं शताब्दी के मध्य के पश्चिमी अकादमिक अभिजात वर्ग, देवताओं, नास्तिकों आदि को छोड़कर सभी को बाहर कर देता है। जस्टो गोंजालेस लातीनी चर्चों का हवाला देते हुए कहते हैं कि बुल्टमैन, जिसे असंभव घोषित करते हैं, वह न केवल संभव है बल्कि बार बार होता है। हुआ युंग, मलेशिया के हाल ही में सेवानिवृत्त मेथोडिस्ट बिशप, बुल्टमैन का मुद्दा एक पश्चिमी मुद्दा है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे एशिया के भीतर हमें समस्याएं हैं, आत्माओं में विश्वास करना या आध्यात्मिक चीजों में विश्वास करना। फिलिप जेनकिंस ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि वैश्विक दक्षिण में ईसाई धर्म अलौकिक के तत्काल कामकाज में काफी रुचि रखता है, और कई अन्य विद्वानों ने इस ओर इशारा किया है। किस प्रकार की साक्ष्यों पर हम विश्वास करेंगे, इसकी एक जातीय केंद्रित सीमा से शुरुआत करना उचित नहीं है, यह कहते हुए कि ठीक है, केवल दुनिया के इस हिस्से से प्राप्त साक्ष्य ही विश्वसनीय हैं। उपचार के दावे कितने व्यापक हैं? खैर, अगर हम उस जोर के लिए जाने जाने वाले कुछ चर्चों से शुरू करते हैं, तो वहां प्रमुख अकादमिक अध्ययन हुए हैं, और यह वैश्विक पेंटेकोस्टल और करिश्माई उपचार के साथ शुरुआत करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। यह विशेष पुस्तक ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई थी। 2006 में केवल 10 देशों में पेंटेकोस्टल और करिश्माई का एक प्यू सर्वेक्षण, जिसे स्पिरिट एंड पावर कहा जाता है। यदि आप 10 देशों को देखें, तो वे अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक प्रमुख महाद्वीप से होते हैं, और वे वहां से नमूने लेते हैं। इनमें से प्रत्येक देश के लिए, या इन 10 देशों के कुल के लिए, और केवल इन 10 देशों के लिए, और अकेले इन देशों में पेंटेकोस्टल और प्रोटेस्टेंट करिश्माई लोगों के लिए, इन लोगों की अनुमानित कुल संख्या, जो दावा करते हैं कि उन्होंने दैवीय उपचार देखा है, कहीं न कहीं से सामने आते हैं। 200 मिलियन लोग। अब ध्यान रखें, ये सिर्फ 10 देश हैं। यह सिर्फ पेंटेकोस्टल और करिश्माई बातें हैं। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि सर्वेक्षण में अन्य ईसाई भी शामिल हैं। इन देशों में लगभग 39% अन्य ईसाई दिव्य उपचारों को देखने का दावा करते हैं। तो हम दुनिया भर के एक तिहाई ईसाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, जो खुद को पेंटेकोस्टल या करिश्माई नहीं मानते हैं, जो दिव्य उपचारों को देखने का भी दावा करते हैं, उनमें से कई संभवतः एक से अधिक बार देखे गए हैं, हालांकि कुछ अन्य ने इसे केवल देखा होगा उनके जीवन काल में एक बार। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक पश्चिमी देश में, 2008 के प्यू फोरम सर्वेक्षण के अनुसार 34% अमेरिकियों ने दैवीय या अलौकिक उपचार को देखने या अनुभव करने का दावा किया है। वे दावे ईसाइयों तक ही सीमित नहीं हैं। कुछ अन्य आंदोलन भी हैं जो इसका दावा करते हैं, हालांकि यह अमेरिका में ईसाइयों के बीच सबसे आम प्रतीत होता है, जहां हमारे पास अन्य समूहों की तुलना में अधिक ईसाई हैं। हालांकि इस सब में मुद्दा यह नहीं है कि इन दावों का कितना हिस्सा वास्तव में दैवीय गतिविधि या वास्तविक चमत्कारों से जुड़ा है। मुद्दा यह है कि क्या ह्यूम वैध रूप से इस आधार से शुरुआत कर सकते हैं कि समान मानव अनुभव चमत्कारों को शामिल नहीं करता है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि समान मानव अनुभव चमत्कारों को शामिल नहीं करता है, जबकि आपके पास कम से कम 200 मिलियन प्रतिगवाह हैं? आपको यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि वे सभी सत्य हैं, लेकिन जब तक आप इस आधार पर शुरुआत नहीं करते कि वे सभी झूठे हैं, आप चमत्कारों के विरुद्ध मानवीय अनुभव के एक समान होने की बात नहीं कर सकते। वह आपका आरंभिक स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा यह सिर्फ ईसाई परिसर से शुरुआत करने वाले लोग नहीं हैं। असाधारण उपचारों के कारण लाखों गैर ईसाइयों को सदियों से चली आ रही पैतृक मान्यताओं को समझाया और बदला गया है। उपरोक्त सर्वेक्षण में चीन नहीं था। यह सर्वेक्षण किए गए 10 देशों में से एक नहीं था, लेकिन वर्ष 2000 के आसपास चाइना क्रिश्चियन काउंसिल के एक स्रोत जो थ्री सेल्फ चर्च से संबद्ध है ने अनुमान लगाया कि पिछले 20 वर्षों में सभी नए रूपांतरणों में से लगभग 50% और उन वर्षों में बहुत सारे रूपांतरण हुए थे, लाखों रूपांतरण, उनमें से लगभग 50% उस चीज के कारण हुए जिसे वे विश्वास उपचार अनुभव कहते हैं। ग्रामीण घरेलू चर्चों के कुछ अनुमान इससे भी अधिक 90% के करीब हैं। अब मैं यह सत्यापित नहीं कर सकता कि यह 50% है या 90% या देश के किस हिस्से में इसका प्रतिशत अधिक था या कुछ भी, लेकिन सटीक प्रतिशत जो भी हो, हम संभवतः गैर ईसाई परिसर से शुरू करने वाले लाखों लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने जो देखा वह सामान्य से कुछ अलग था, न कि केवल कुछ ऐसा जो सामान्य रूप से बेहतर हो गया, न कि केवल कुछ ऐसा जो काम करने के अपने पारंपरिक तरीकों से वे इतने बेहतर हो गए कि वे सदियों से चली आ रही मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो गए। 1981 के एक अध्ययन में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, में 10% गैर ईसाइयों ने बताया कि यीशु के नाम पर प्रार्थना करने पर वे ठीक हो गए थे। अब फिर से सर्वेक्षणों के साथ कोई रास्ता नहीं है। वापस जाकर इन सभी लोगों का दोबारा साक्षात्कार लें। लेकिन हम बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने दावा किया कि जब किसी ने उनके लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना की तो वे ठीक हो गए। और ये सिर्फ वे लोग नहीं थे जो ऐसा होने पर ईसाई बन गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईसाई नहीं बने थे, लेकिन उन्हें यह अनुभव तब हुआ जब किसी ने उनके लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना की। जिस मदरसे में मैं पहले पढ़ाता था, वहां मेरा एक छात्र बीमारों के लिए प्रार्थना के माध्यम से उसका बैप्टिस्ट चर्च मुट्ठी भर से बढ़कर लगभग 600 लोगों तक पहुंच गया, जिनमें से ज्यादातर दूसरे धर्म से धर्मांतरित थे। जेपी मोरलैंड, जो एक प्रसिद्ध इंजील विद्वान हैं, ने बताया कि पिछले 3 दशकों में तेजी से इंजील विकास हुआ है। इसका 70% तक संकेत और चमत्कार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, और 3 दशक पहले भी एक बहुत व्यापक थीसिस थी जो 1981 में क्रिश्चियन डेविड द्वारा फुलर सेमिनरी में की गई थी, जो मुझे अभी मिली। उन्होंने 350 से अधिक अन्य थीसिस और शोध प्रबंधों का सर्वेक्षण किया और योगदान देने वाले चमत्कारों के बारे में जितना वे संभवतः उपयोग कर सकते थे उससे कहीं अधिक पाया। दुनिया भर में चर्च के विकास के लिए, विशेष रूप से नहीं बल्कि अधिकतर, यह अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रचार में नाटकीय तरीकों से घटित होता प्रतीत होता है। अब भगवान कहीं भी प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। जब हम जेम्स अध्याय 5 में बीमारों के लिए विश्वास की प्रार्थना करने के बारे में पढ़ते हैं, तो उपचार के लिए नाटकीय होना जरूरी नहीं है। भगवान औषधि के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं। भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर धीरे धीरे दे सकते हैं। यह कुछ ऐसा होना जरूरी नहीं है जो गिनने के लिए दृश्यमान हो। और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभूतपूर्व सुसमाचार प्रचार के क्षेत्रों में यह मामला गॉस्पेल और अधिनियमों के समान ही है, जहां आपके पास संकेतों के रूप में चमत्कार होते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो मसीह के दावों पर विचार करने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। कभी कभी वे वास्तव में उत्पीड़न का कारण बनते हैं, क्योंकि लोगों के पास आपको बंद करने का कोई अन्य तरीका नहीं होता है। बाइबल में चमत्कारों ने कभी कभी ऐसा किया। आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन भगवान विशेष रूप से ये नाटकीय संकेत करते हैं, विशेष रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से अभूतपूर्व प्रचार के क्षेत्रों में। इसलिए हम उनमें से अधिक को वहां देखते हैं जहां हम पहली बार सुसमाचार साझा करने जाते हैं, जो मैथ्यू के सुसमाचार में एक प्रमुख विषय के अनुरूप होगा। यह बात अतीत में भी सच है। कई चर्च फादरों ने दावा किया कि वे उपचार और भूत भगाने के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कई बहुदेववादियों को परिवर्तित कर रहे थे। यह तीसरी और चौथी शताब्दी में धर्मांतरण का प्रमुख कारण था। आप इसे पूरे इतिहास में पाते हैं। मैं कई अन्य उदाहरण नहीं दूंगा, मैं बस यही दूंगा। कोरियाई पुनरुद्धार में यह एक प्रमुख विशेषता थी, विशेष रूप से 1900 के दशक की शुरुआत में, मुख्य रूप से प्रेस्बिटेरियन के बीच। कई चमत्कार, कई उपचार और झाड़फूंक हो रहे थे। उस समय कोरिया में मौजूद कई पश्चिमी मिशनरियों ने कहा, ठीक है, हम वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते हैं, ये सिर्फ स्थानीय कोरियाई विश्वासी हैं, हम आत्माओं पर भी विश्वास नहीं करते, लेकिन हम एक अध्ययन कराएंगे और उससे इसका समाधान निकलेगा। उन्हें आश्चर्य हुआ, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि चमत्कार वास्तव में हुए थे। कुछ पश्चिमी मिशनरियों को कोरियाई ईसाइयों के विचारों में परिवर्तित कर दिया गया। विज्ञान के रूप में विज्ञान अप्राप्य घटनाओं का उच्चारण करता है। विज्ञान बहुत अच्छा है, विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्येक अनुशासन के साथ आपको ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण का उपयोग करना होगा जो उस अनुशासन के लिए उपयुक्त हो। विज्ञान का उद्देश्य इतिहास की अनोखी घटनाओं से निपटना नहीं है, जैसे कि परिभाषा के अनुसार चमत्कार होते हैं। विज्ञान आपको यह नहीं बताएगा कि क्रेग कीनर का जन्म एक निश्चित तारीख को हुआ था। आपके पास इसके लिए अन्य सबूत हो सकते हैं, लेकिन आप वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग से यह नहीं बता सकते जब तक कि आप उस समय वहां नहीं थे। आप सिर्फ प्रयोग करने और यह देखने के लिए मेरा जन्म कई बार नहीं करवा सकते कि क्या यह हमेशा एक ही तारीख को होता है। जर्नल लेख आम तौर पर जो अनुकरणीय है उसका इलाज करते हैं, इसलिए हमारे पास वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इसका उतना हिस्सा नहीं है। इसलिए जब कोई आता है और कहता है, ठीक है, यदि आप प्रार्थना करते समय ऐसा हर समय नहीं होता है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। यह बेतुका है, क्योंकि आपको यह दिखाने के लिए कि ईश्वर कार्य कर रहा है, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। ईश्वर हमारे फार्मूले का पालन करने या जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए बाध्य नहीं है। हम जो देखते हैं चमत्कार सुसमाचार में हैं, वे राज्य के संकेत हैं। वे एक बेहतर दुनिया का वादा है, जहां कोई पीड़ा नहीं होगी, जहां भगवान हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे। ये चिन्ह यीशु ने कहा, ये पूर्व सूचना है, ये परमेश्वर के राज्य के लक्षण हैं। ये आपको बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। वे सिर्फ एक नमूना है। इस दुनिया में हमारा कोई भी उपचार अस्थाई है, क्योंकि देरसबेर हम मर जाएंगे जब तक कि प्रभु पहले वापस नहीं आते। तो चमत्कार का मतलब यह कहना नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूँ, मुझे उस व्यक्ति की परवाह नहीं है। कहने का तात्पर्य चमत्कार से है, यह एक अनुस्मारक है। यह आप सभी के लिए आशा का वादा है जो मानते हैं कि मैं इस टूटी हुई दुनिया को ठीक करने जा रहा हूँ। और अभी मैं आपको उस आने वाले दिन की याद दिलाने के लिए पहले से ही दुनिया में काम पर हूँ। प्रत्येक विषय के लिए हम उपयुक्त पद्धति का उपयोग करते हैं। विज्ञान में अक्सर प्रयोग शामिल होते हैं। इतिहास की घटनाएं, जिनमें चमत्कार भी शामिल हैं, प्रयोगों के अधीन नहीं हैं, लेकिन वे अन्य चीजों के अधीन हैं, जैसे प्रत्यक्षदर्शियों से जांच करना इत्यादि। मैं अब चमत्कारों के विषय से भूतप्रेत भगाने के विषय की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसके बारे में हमारे सुसमाचारों में भी बहुत कुछ है। राक्षसों पर यीशु का अधिकार, मत्ती 8:28-34। कब्रों को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें राक्षसों और जादू का विशेष अड्डा माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह राक्षसी कब्रों में घूम रही है। लेकिन हमने पाया है कि राक्षस भी पहचानते हैं कि उनका न्यायाधीश कौन है। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक की कथा में केवल अलौकिक प्राणी ही यीशु की पहचान को तुरंत पहचानते हैं। आपके पास स्वर्ग से बोलने वाला पिता है। आपके पास यीशु की पहचान को पहचानने वाले राक्षस भी हैं। और ये राक्षस कभी कभी कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा क्या है जो दूरियां डालने का एक तरीका है। वे यीशु से डरते हैं। मत्ती 8:28 में दुष्टात्माएं कहती हैं, तुम हमें समय से पहले क्यों सताने आए हो। मार्क में यह सिर्फ इतना कहता है, तुम हमें पीड़ा देने क्यों आए हो। मैथ्यू के पास वहां कुछ और शब्द हैं। तो समय से पहले हमें क्यों सताने आया है। वे पहचानते हैं कि एक दिन उनका दिन आएगा, किसी दिन न्याय का दिन उन पर आ पड़ेगा। लेकिन यीशु जैसे वह चमत्कार करता है और अभी तक नहीं हुआ है, यह भविष्य का पूर्वाभास है। वह भविष्य की पूर्व सूचना के रूप में दुष्टात्माओं को भी बाहर निकाल रहा है। इसलिए वह कहता है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती 12 में हम इस कथा में भी देखते हैं, यीशु संपत्ति से अधिक लोगों को महत्व देते हैं। और जब ये राक्षस बाहर आते हैं तो बड़ा धमाल मचाते हैं। वे सुअरों में चले जाते हैं और सुअर डूब जाते हैं। मैं अपने छात्रों के साथ मजाक करता हूं, यहीं पर हमें अभिव्यक्ति मिलती है, देविल है। लेकिन किसी भी मामले में सुअर डूब जाते हैं और हर कोई यीशु से बहुत परेशान है। इसलिए यीशु ने उस आदमी को वापस जाने और उन्हें यह बताने के लिए भेजा कि भगवान ने उसके लिए क्या किया है। यीशु कोई जादूगर, जादूटोना करने वाला, कोई द्वेषपूर्ण व्यक्ति नहीं है, जैसा कि स्थानीय गैर यहूदी सोचते हैं। लेकिन यीशु परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यीशु परमेश्वर का सेवक है। बेशक हम जानते हैं कि वह देह में भी भगवान है, लेकिन वह इन अंशों में भगवान के लिए बोल रहा है। तो आत्माओं और आत्मा के कब्जे को देख रहे हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि कोई व्यक्ति जिसके मैं बहुत करीब था, जो ईसाई नहीं है, वह मेरे विचार का मजाक उड़ा रहा था कि सुसमाचार में विश्वास करते समय जब वे राक्षसों को बाहर निकालने या लोगों में आत्माओं के होने के बारे में बात करते हैं। और मैंने कहा, ठीक है, मानवविज्ञानी जो यह भी नहीं मानते कि ये आत्माएं हैं, उन्होंने अक्सर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक ही प्रकार की गतिविधि का दस्तावेजीकरण किया है। उसने बस मेरा उपहास किया। इसलिए मैं आगे बढ़ा और इसका दस्तावेजीकरण किया और इसे दिखाने के लिए कई मानवशास्त्रीय स्रोतों का अध्ययन किया। मानव विज्ञानियों ने इतने व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया है कि ट्रांस के कब्जे से इनकार को फ्लैट अर्थर होने के मानवशास्त्रीय समकक्ष के रूप में माना जाता है। पहले से ही 1970 के दशक में एरिका बर्गविजन, अगर मैं उसका नाम सही ढंग से उच्चारण कर रहा हूँ, तो विभिन्न मानवशास्त्रीय रिपोर्टों को एक साथ लाने से पता चला कि 74% समाजों में आत्मा पर कब्जा करने का विश्वास था। यह दुनिया के कुछ हिस्सों में दूसरों की तुलना में अधिक है, लेकिन यह दुनिया भर में होता है। कुछ आत्माधिपत्य गतिविधियां हैं जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होती हैं। वे विशेष सांस्कृतिक रूप धारण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मनोशारीरिक रूप से भी लगभग हर जगह आत्मा के कब्जे की रिपोर्ट में सुसंगत हैं। मानव विज्ञानी आम तौर पर आत्मा के कब्जे को किसी बुरी आत्मा के प्रभाव के संदर्भ में स्वदेशी या स्थानीय रूप से व्याख्या की गई चेतना की किसी भी बदली हुई स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए मानव विज्ञानी यह विश्वास करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं कि ये आत्माएं हैं, बल्कि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्थानीय रूप से आत्माएं माना जाता है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद को उन्मादी बना रहे हों। उनमें से कुछ मानसिक रोग हो सकते हैं। उनमें से कुछ को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास अन्य चीजें हैं जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। कम से कम मेरी राय में वे स्पष्ट रूप से उससे कुछ अधिक हैं। आपने न्यूरोफिजियोलॉजी को बदल दिया है। कभी कभी जब लोग कब्जे वाली ट्रांस में होते हैं, तो उन्होंने अपने मस्तिष्क की गतिविधि का परीक्षण किया होता है और वे कुछ बहुत ही असामान्य अनुभव कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कब्जे के व्यवहार में अक्सर आवाज और व्यवहार में अचानक बदलाव शामिल होते हैं। यहाँ तक कि एक मानव विज्ञानी की रिपोर्ट है कि कभी कभी मानव विज्ञानी के लिए खुद को, या हम आज खुद भी कहेंगे, यह समझाना कठिन हो जाता है कि यह वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे वह पहले देख रहा है या सामना करना, इसलिए व्यक्तित्व परिवर्तन के रूप में चिन्हित किया गया। मेरे पास दुनिया भर से इसके कुछ प्रमाण हैं। एक अफ्रीका के जोराम मुगारी का है, जो अभी, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, अपनी PhD पर काम कर रहा है, या अभी अभी अपनी PhD पूरी की है। जोराम एक ईसाई है। मैं उनसे गॉर्डन कॉनवेल सेमिनरी में मिला था, लेकिन जोराम ईसा मसीह में विश्वास करने से पहले पारंपरिक अफ्रीकी धर्म में एक ओझा था, तो उसके पास मुझे बताने के लिए आत्माओं की गतिविधि के बारे में बहुत सारी कहानियां थीं, जिन्हें उसने ईसाई बनने से पहले और ईसाई बनने के बाद देखा था। विभिन्न स्रोतों में आत्मा का कब्जा हमेशा खुद को इस तरह व्यक्त नहीं करता है, लेकिन कभी कभी यह खुद को हिंसक व्यवहार में व्यक्त करता है, जिसमें आग में कूदकर अपना सिर पीटना और खुद को काटना शामिल है। कुछ स्थान जैसे इंडोनेशिया कभी कभी आग पर चलना या दर्द के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। कभी कभी यह दूसरों के प्रति हिंसक हो सकता है, जैसे हम Mark 5:1-20 में लीजन नाम के व्यक्ति को देखते हैं, या Matthew 8 में समानांतर मार्ग देखते हैं। कभी कभी इसके साथ गुप्त घटनाएं जुड़ी होती हैं, और यह उन स्थानों में से एक है जहां हम देख सकते हैं कि इसमें वास्तव में संभवतः आत्माएं शामिल हैं। कभी कभी यह सिर्फ एक व्यक्तित्व विकार होता है। यह वास्तव में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन कभी कभी यह अधिक चरम होता है। आपके पास ऐसी वस्तुएं हैं जो बिना छुए कमरे के चारों ओर घूम रही हैं, कमरे में उड़ रही हैं। मेरा एक मित्र है जो बहुत प्रसिद्ध ईसाई विद्वान है, और अगर मैंने उनका नाम बताया तो आप में से कुछ लोग उनका नाम जानते होंगे, लेकिन चूंकि मैंने पहले उनकी अनुमति नहीं मांगी थी, इसलिए मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वह एक प्रसिद्ध ईसाई विद्वान है। वह मुझे बता रहा था कि जब वह छोटा था, एक पादरी के घर में पलाबधा था, तो मंडली में कुछ लोग थे जिन्हें वास्तव में अपने परिवार से समस्याएं थीं। और एक बार उसने देखा कि एक तौलिया हवा में तैर रहा है और घूमने लगा है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो व्यक्तित्व विकारों के कारण होती हैं, जब तक कि आप यह न कहें कि वह सिर्फ मतिभ्रम कर रहा था। लेकिन हमारे पास इस तरह की चीजों का बहुत सारा लेखा जोखा है। दीवार पर क्रूस एक और मामला है। दीवार पर एक क्रूस छूने से गर्म होकर गिर गया। भूत भगाने की विद्या मानवशास्त्रीय साहित्य में भी दिखाई देती है, अक्सर पारंपरिक धर्मों में, जिसका मानवविज्ञानी अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। कुछ संस्कृतियों में कब्जे की बीमारी का यही एकमात्र इलाज है, और इसलिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और मनोचिकित्सक जो आत्माओं में विश्वास नहीं करते हैं, इस बात पर बहस करते हैं कि क्या स्थानीय मान्यताओं को समायोजित किया जाए, क्या इससे वास्तव में लोगों को मुक्त होने में मदद मिलेगी या नहीं। ईसाइयों में हमारे पास दुनिया के कई हिस्सों में बहुत सारे ईसाई हैं। इथियोपिया में लगभग 74% ईसाइयों का दावा है कि उन्होंने भूत प्रेत भगाने का काम देखा है। मेरे छात्र पॉल मुकाके ने एक महिला के बारे में बात की जो समुद्री आत्माओं को बाहर निकाले जाने पर नागिन की तरह छटपटा रही थी। अब समुद्री आत्माओं को स्थानीय रूप से यही कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि उनका वास्तव में समुद्र से कोई लेना देना है या नहीं। हालांकि स्थानीय मान्यता है कि उनका समुद्र से कोई लेना देना है। एक अन्य मामले में नेपाली पादरी मीना केसी नाव बोलने में असमर्थ होना हमेशा किसी राक्षस के कारण नहीं होता है। यह सभी प्रकार की चीजों के कारण हो सकता है। संभवतः आमतौर पर यह शारीरिक समस्याओं के कारण होता है। लेकिन इस मामले में तीन अलग अलग बहनें थीं जो एक ही समय में मूक हो गईं और 3 साल तक बोलने में असमर्थ रहीं। जब मीना केसी ने एक आत्मा को बाहर निकाला तो वे सभी तुरंत ठीक हो गए। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में नेल्सन मंडेला मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में औद्योगिक मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख रॉबिन स्नेलगर एक विदेशी व्यक्तित्व द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के अपने पूर्व अनुभव को याद करते हैं। उन्होंने इससे छुटकारा पाने के लिए हर तरह की कोशिश की, मनोचिकित्सा, ड्रग्स और अन्य चीजें। कोई भी चीज तब तक प्रभावी नहीं थी जब तक कि इसे किसी ईसाई के माध्यम से स्वतःस्फूर्त रूप से प्रयोग न किया जाए। मैंने क्यूबा में युस्मारिना अकोस्टा एस्टेवेस का साक्षात्कार लिया और उसने मुझे 1988 में अपने रूपांतरण के बारे में बताया। वह आत्माओं से निपट रही थी। मुझे नहीं पता कि वह सेंटेरिया में थी या नहीं, लेकिन वह आत्माओं से निपट रही थी, आत्माओं का आह्वान कर रही थी। हृदय और गुर्दे की खराबी के कारण वह चलने फिरने में बहुत बीमार थी। कुछ पादरियों ने उसके लिए प्रार्थना की। वह तुरंत सब कुछ से ठीक हो गई और वह यीशु की अनुयायी बन गई। क्या ये वास्तविक आत्माएं हैं या यह मनोदैहिक पुनर्प्राप्ति है? एडिथ टर्नर वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के व्याख्याता हैं। वह एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमेनिज्म पत्रिका की संपादक हैं। वह प्रसिद्ध मानव विज्ञानी विक्टर टर्नर की विधवा भी हैं। एडिथ टर्नर का दावा है कि जब वह एक पारंपरिक अफ्रीकी अनुष्ठान के दौरान उपस्थित थी तो उसने आत्मा पदार्थ को बाहर निकलते देखा। यह जाम्बियन आत्मा अनुष्ठान के दौरान था। यह ईसाई नहीं था और वह इसे ईसाई दृष्टिकोण से नहीं बता रही है। वह इसे एक मानवविज्ञानी के दृष्टिकोण से बता रही है जो वहां मौजूद था और उसने वास्तव में कुछ दृश्यमान घटित होते देखा था। वह ऐसा ईसाई दृष्टिकोण से नहीं कह रही है। मुझे लगता है इस तथ्य से सत्यापित किया जा सकता है कि वह अपने छात्रों को आत्माओं का अनुभव करना भी सिखाती है, जो कि ईसाई दृष्टिकोण से शायद अच्छी बात नहीं है, लेकिन वे हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। हमसे सहमत हैं, हम हमेशा उनसे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए बुलाया गया है, चाहे हम उनसे सहमत हों या नहीं। तो केवल यह दर्शाने के लिए कि लोगों ने इन चीजों को तब भी देखा है जब वे मूल रूप से विश्वदृष्टि का हिस्सा नहीं हैं। मानव विज्ञानी सोलोन किम्बॉल आयरलैंड में फील्डवर्क के दौरान एक प्रेत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ उसमें से गुजर गया। उन्होंने पाया कि कई अन्य लोगों ने भी कई बार क्षेत्र में वही आकृति देखी थी उनसे स्वतंत्र होकर, और उन्होंने कहा, ठीक है, शायद यह हवा में कुछ सांस्कृतिक है। विश्व स्तर पर अधिकांश विश्व ईसाई आत्माओं की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, और उन्होंने बढ़ती संख्या में पश्चिमी लोगों को आश्वस्त किया है जो इसके लिए खुले हैं, और मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन दक्षिण अमेरिका के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बाइबल अनुवादक था, और वह कह रहा था, वास्तव में आपको उन आत्माओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आप बात करते हैं, और वे कहते हैं, ओह, वे हमारे चारों ओर हैं, आपके अलावा हर कोई उन्हें देख सकता है, और वे इस बाइबल में हैं जिसका आप अनुवाद करते हैं। मेरा मतलब है, हो सकता है कि आप उन्हें शाब्दिक रूप से न लें, लेकिन वे वही हैं। किसी भी मामले में पश्चिम में ज्ञानोदय के साथ अंधविश्वास के प्रति हमारी उचित प्रतिक्रिया हुई, और अक्सर आत्माओं और अन्य चीजों को लेकर बहुत अधिक अंधविश्वास होता है। लेकिन अंधविश्वास के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में हमने आत्माओं की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। शायद अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्तिगत मामलों के साक्ष्यों को देखना होगा। मनोचिकित्सक स्कॉट पेक, एक बहुत प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, ने कहा कि अधिकांश कथित राक्षस अधिकांश चीजें जो लोग सोचते थे कि वे राक्षस हैं, उन्होंने सोचा कि वे सिर्फ मनोवैज्ञानिक समस्याएं थीं। लेकिन उन्हें दो ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा जिनकी व्याख्या किसी अन्य तरीके से नहीं की जा सकती थी, सिवाय इसके कि ये वास्तविक राक्षस थे। ड्यूक विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा के एमेरिटस प्रोफेसर विलियम विल्सन और कई अन्य लोगों ने इन बातों पर ध्यान दिया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हर किसी ने उनका अनुभव किया है, लेकिन कई लोगों ने उनका अनुभव किया है, और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शैक्षणिक विश्वसनीयता भी दांव पर लगा दी है। कुछ लोगों को ऐसा करना पसंद नहीं है। लेकिन आज एक बहुत प्रसिद्ध न्यू टेस्टामेंट विद्वान हैं, डेविड इनस्टोन ब्रेवर, जो मूल रूप से एक मनोचिकित्सक के रूप में काम करते थे। वह एक मनोचिकित्सक बनने की योजना बना रहे थे, और वह अस्पताल में चक्कर लगा रहे थे, और वह यहां गया। वह कैम्ब्रिज में टाइंडल हाउस में काम करता है, लेकिन उस समय वह मनोचिकित्सा के चक्कर लगा रहा था। वह उस व्यक्ति के बिस्तर के पास था जो बस सोता हुआ प्रतीत हो रहा था, और चुपचाप वह व्यक्ति उसे सुन नहीं सका। चुपचाप डेविड अपने आप में ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, कृपया इस व्यक्ति की मदद करें। वह व्यक्ति अचानक उठ बैठा, उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुसा दी और बोला, उसे अकेले रहने दो, वह मेरा है। इस तरह की मुठभेड़ों से व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि वे वास्तव में आत्माएं हैं। खैर, यह अगला डेविड वान गेल्डर का है। वह परामर्श के प्रोफेसर हैं। यह एक काउंसलिंग जर्नल में प्रकाशित हुआ था। वहां एक 16 साल का बच्चा था जो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा था। दीवार पर एक क्रूस था। यह दीवार से गिर गया। नाखून सचमुच पिघल गए। वह कोई व्यक्तित्व विकार नहीं है। और डेविड वान गेल्डर और उनके कुछ सहयोगी, परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक इस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करने आए। उनका पेशेवर निदान यह मिर्गी नहीं है, यह मनोविकृति नहीं है, ऐसा कुछ और नहीं है जिसे हम इन अन्य तरीकों से समझा सकें। लेकिन वे ईसाई थे और उन्होंने उससे कहा, अच्छा, इसे आजमाओ, कहो यीशु प्रभु है। और इसके बजाय कुछ बहुत ही अलग आवाज में सामने आया। तुम मूर्ख हो, वह ऐसा नहीं कह सकता। खैर, आखिरकार उन्होंने इसे यीशु के नाम पर निकाल दिया। लेकिन फिर भी आत्माएं हैं। कम से कम मेरा मानना है कि आत्माएं हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा मानने के अच्छे कारण हैं। मेरे जीजाओं में से एक, यह मेरा जीजा है जो ब्रेजाविल में रहता है। वह ब्रेजाविल विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं और उनके पास PhD है। फ्रांस से बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह इमानुएल मासुंगा। उन्होंने मुझे विभिन्न खातों के बारे में भी बताया। उनमें से एक तीन लड़कों का विवरण था जो संडे स्कूल की उस कक्षा में जाते थे जिसे इमानुएल पढ़ाते थे। इमानुएल फिर से एक वैज्ञानिक है। विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं और उनके पास PhD है। फ्रांस से बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह इमानुएल मासुंगा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से भोला बन जाए। वह यीशु में विश्वास रखता है, लेकिन जब वह चीजों को देखता है तो उन्हें भी पता चल जाता है। इस मामले में ये तीन लड़के थे। वे संडे स्कूल कक्षा के सदस्य थे, और एक लड़का, सबसे बड़ा, बीमार पड़ गया और कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही दूसरा बीमार हो गया और लगभग एक महीने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तुरंत तीसरा बीमार हो गया और उस समय तीसरा इमानुएल और दूसरे संडे स्कूल के शिक्षकों के पास आया और कहा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। यह एक रहस्य माना जाता था। अगर हमने बता दिया तो जादू काम नहीं करने वाला था। लेकिन जाहिर है यह वैसे भी काम नहीं कर रहा है। हम सड़क पर इस आदमी से मिले जिसने हमें बताया कि हमारे पास सरकारी मंत्री बनने की अलौकिक क्षमता होगी। अगर हम उसे अपने खून का थोड़ा सा हिस्सा दे दें तो हम बहुत समृद्ध लोग बन जाएंगे। और उसने चाकू से हम में से प्रत्येक का खून लिया। सबसे छोटा बच्चा ऐसा नहीं होने देना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। और उसके तुरंत बाद तीनों लड़के आपस में बात कर सके। सबसे बुजुर्ग को एक बुरा सपना आया जहां वही आदमी आया और उसी चाकू से उस पर वार कर दिया। वह तुरंत बीमार पड़ गए। जिस रात उनकी मृत्यु हुई, दूसरे को भी वैसा ही दुःस्वप्न आया। और जिस रात वह मरा, तीसरे को भी वैसा ही दुःस्वप्न आया। तो वह संडे स्कूल के शिक्षक के पास आया और कहा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने 9 दिनों तक दिन में प्रार्थना की और उपवास किया। तब वे आए और उन्होंने उस पर हाथ रखा। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और वह ठीक हो गया। उनके कुछ सहयोगी, परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक इस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करने आए। और मैंने हाल ही में अपने जीजाजी से बात की। और युवक अभी भी ठीक है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आसानी से नहीं समझाया जा सकता, सिवाय इसके कि वहां वास्तव में राक्षस काम कर रहे हैं। और ये चीजें मेरे लिए असहज थीं। वे मेरे अपने विश्वदृष्टिकोण में फिट नहीं बैठते थे। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि राक्षसों के पास किसी व्यक्ति के दिमाग के बाहर कुछ भी करने की शक्ति होती है। मेरा मतलब है, मैं एक ईसाई के रूप में आत्माओं में विश्वास करता था। मैंने उन्हें बाइबल में देखा था, लेकिन कुछ साल पहले तक मुझे नहीं लगता था कि वे वास्तव में कुछ और कर सकते हैं। मैं अय्यूब की किताब पढ़ रहा था और मुझे एहसास हुआ, ओह हाँ, शैतान ने अय्यूब के बच्चों के ऊपर उस घर को उड़ा दिया था। लेकिन वैसे भी इन सब का उद्देश्य हमें राक्षसों से डराना या आत्माओं से डराना नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारे वहां दुश्मन हैं, एक आध्यात्मिक आयाम जो हमारे लिए शत्रुतापूर्ण है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के पास वास्तव में अधिक शक्ति है जैसा कि हम इन खातों में देखते हैं। खैर, यह विशेष विवरण घटित हुआ और जब तक मैंने इसे अय्यूब की पुस्तक में नहीं देखा तब तक मैं भ्रमित रहा, क्योंकि एक दिन लगातार दो दिनों तक मैं सबसे तीव्र आध्यात्मिक हमले का अनुभव कर रहा था जिसका मैंने उस समय तक कभी सामना नहीं किया था। शुक्रवार को अलग आध्यात्मिक हमला, शनिवार को अलग। मैं बस पवित्र शास्त्र के आधार पर इससे लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। लेकिन तीसरे दिन मैं और मेरी पत्नी टहलने के लिए बाहर गए और हमारा बेटा टहलने के लिए बाहर गया और हम इस पेड़ के नीचे रुके जो लगभग 3 मंजिल लंबा था, नीचे से बहुत चौड़ा था लेकिन काफी ऊंचा भी था। और हम तय कर रहे थे कि किस रास्ते पर जाना है। हमारे बेटे ने कहा, चलो इसी तरफ चलते हैं। जैसे ही हम पेड़ के नीचे से निकले, पेड़ नीचे से टूट गया। वह नहीं उखड़ा, वह बस नीचे से विभाजित हो गया और पेड़ ठीक उसी जगह गिर गया जहां हम खड़े थे। हमें कुचल कर मार डाला गया होता। अब अगर आप तस्वीर में देखें तो पृष्ठभूमि में एक अस्पताल है और इसका मतलब है कि वे हमें बहुत जल्दी मृत घोषित कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम कुचले गए होते तो हम थोड़े उत्साहित थे। हम वापस आए और मैंने एक कैमरा लिया और तस्वीरें ली वगैरह, लेकिन जब तक मेरी पत्नी ने ब्रेजाविल में अपने भाई से संपर्क नहीं किया तब तक हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ था जो प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यह दानव इन विभिन्न तरीकों से क्रेग पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और अगर वह काम नहीं कर रहा था तो उसने कहा, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब अपने दिल में मैं इस आत्मा को इस पेड़ की चोटी तक जाते हुए इसे चारों ओर मोड़ने की कोशिश करते हुए देखता हूँ और तभी उसने समझाया कि वास्तव में क्या हुआ था। और उसने कहा, ओह, यह समझ में आता है। और उसके बाद कुछ अन्य चीजें भी आईं, लेकिन इससे हमें कुछ बातें पता चली। लेकिन एक चीज जो हमें बताती है कि ये चीजें वास्तव में वास्तविक हैं, लेकिन भगवान ने हमारी रक्षा की है। हमने जो चीजें सीखी उनमें से एक यह थी कि एक साथ एकता में रहने से मदद मिलती है, क्योंकि यह उस समय हमारे सामने मौजूद समस्याओं में से एक थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर रॉडनी रैगवान मेरे एक मित्र, वह दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय बैप्टिस्ट हैं। उन्होंने मुझे अपने दादाजी के बारे में बताया और यह कहानी उन्हें सीधे अपने पिता से मिली थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पिता से संपर्क कराया ताकि मुझे अपने पिता से यह कहानी मिल सके। लेकिन एक आदमी अपने दादा के पास आया और कहा, तुम्हें पता है, आज रात मैं तुम्हारे घर एक आत्मा भेजने जा रहा हूँ और तुम देखोगे कि यह तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। और इसलिए रॉडनी के दादा और दादी और उनके बच्चों ने एक साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने कहा था कि वह आधी रात के आसपास एक आत्मा भेजने वाला था, इसलिए परिवार प्रार्थना कर रहा था और उपवास कर रहा था और 1145 के आसपास और लगभग 20 मिनट तक उन्होंने घर के चारों ओर इन बड़े कदमों की आवाज सुनी। रॉडनी के पिता को यह अच्छी तरह याद है। अगले दिन वह आदमी रॉडनी के दादाजी के पास आया और स्वीकार किया कि उसकी आत्माएं अंदर नहीं आ सकती, कि इस आदमी का भगवान सच्चा भगवान था जो इस दूसरे आदमी की आत्माओं से अधिक मजबूत था। इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिणी अफ्रीका आदि में शक्ति मुठभेड़ों के माध्यम से कई आध्यात्मिक चिकित्सकों को परिवर्तित किया गया है। थांडी रांडा, जिन्होंने असबरी सेमिनरी में डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री की डिग्री ली जहां मैं पढ़ाता हूं, इंडोनेशिया से हैं और उन्होंने कई चीजों की रिपोर्ट की है जिसमें कई जादू टोना कार्यकर्ताओं का धर्म परिवर्तन भी शामिल है। अब जादू टोना, ठीक है, उनमें से कुछ वास्तव में खुद को ऐसा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं, नहीं, आपको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वैसे भी उनमें से कुछ खुद को यही कहते हैं, वे जो शाप भेजते हैं इत्यादि, और हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो वास्तव में अपने लिए उस भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन जो भी हो, यह जादू टोने की कुछ वस्तुओं को जलाने की उनकी तस्वीर थी। अकेले 2011 में एक पर्वतीय क्षेत्र में थांडी की पुरुद्धार बैठकों के दौरान 28 जादू टोना करने वालों का धर्म परिवर्तन किया गया था और यहां उनका बपतिस्मा किया जा रहा है। यीशु ने राज्य को बाहरी लोगों के लिए एक रहस्य बताया, लेकिन दुष्टात्माएं उसकी पहचान जानती थीं, इसलिए उसने हमेशा उन्हें चुप करा दिया। यीशु के समय में अन्य प्रकार के ओझाओं ने दुष्टात्माओं का मुंह बंद करने के लिए बदबूदार जड़ों का उपयोग किया। कभी कभी वे निचली आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए जादू की अंगूठियों या नामों, उच्च आत्माओं का आह्वान करने वाले जादुई सूत्रों का इस्तेमाल करते थे, परंतु यीशु ने उन्हें बस एक शब्द से निष्कासित कर दिया, जैसा कि हम मत्ती 8:16 में देखते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पृष्ठभूमि के रूप में भूत भगाने और आत्माओं पर इतना ही काफी है। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 3 चमत्कार भाग 2 और भूत प्रेत भगाने की विद्या है।